Get out of here.
पीपीए के अध्यक्ष श्री महेश जी अग्रवाल, इंदौर सीए ब्रांच के अध्यक्ष श्री अभिषेक जी गांग, दोनों संस्थाओं के पदाधिकारीगण, मेरे वरिष्ठ जन और मित्रों, जैसा कि महेश जी ने बताया कि अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर्स तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन अच्छे इंसान बहुत कम हैं। हर व्यक्ति को शायद कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले वो एक अच्छा इंसान बने, और अच्छा इंसान ही अच्छा प्रोफेशनल, अच्छा पिता, अच्छा पति, अच्छा पुत्र, सब कुछ हो सकता है। आज जो हम गीता की बात करेंगे उसका कोई हमारे मान्यताओं से, धर्म से, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इन सारी चीज़ों का मतलब है कि हम लोग प्रैक्टिशनर्स होने के नाते हम लोगों में दो क्वालिटीज़ होती हैं, और ज्ञान को ग्रहण करने की भी एक हमारी अनोखी विशेषता होती है। पढ़े लिखे आदमी को ज्ञान विद्या के रूप में ही समझ में आता है। विद्या के रूप में ज्ञान का मतलब है कि जो पाठ्य पुस्तक से मिलता है, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हों, जिसमें अलग अलग मॉडल्स हों। आजकल इवन मैनेजमेंट भी, मैनेजमेंट में बिहेवियरल साइंस इन मैनेजमेंट आ गया है, और कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि मैनेजमेंट की कहाँ ज़रूरत है। अभी एक दो किताब नई जो रिसर्च आ रही हैं, अभी एक किताब भी निकली है द फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें ये बताया है कि मैनेजमेंट हैज बिकम इररिलेवेंट। इतना सारा उस पर काम करते हैं, इतने सारे उसके प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आदमी को विजन होना चाहिए, अगर विजन है तो उसको सक्सेस मिल जाती है। तो सक्सेस के लिए उनका कहना है, हालांकि बड़ा डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है, बट उनका कहना है। तो हम लोगों को ज्ञान लेने की एक हमारा माइंडसेट फिक्स है, उसी तरह से हम ज्ञान ले सकते हैं। अब ये जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, या गीता लिखी गई है, महाभारत लिखी गई है, रामायण लिखी गई है, वेद पुराण लिखे गए हैं, तो ये टेक्स्ट बुक के रूप में थोड़ी लिखे गए हैं। इनको टेक्स्ट बुक के रूप में नहीं लिखा गया है, इनको तो एक सर्वव्यापी रूप में लिखा गया है। और उस समय किसी को रॉयल्टी की, किसी को कमाने की वो चिंता नहीं थी। इन्हें कई तो ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें लिखने वाले ने अपना नाम भी नहीं लिखा। कई तो ग्रंथ ऐसे, किसी भी ग्रंथ में आपको परिचय तो लिखा ही नहीं है लेखक का। वेद व्यास तो वेद व्यास ने अपना परिचय नहीं लिखा है, कोई प्राकथन नहीं लिखा है। तो इसलिए आज के युग में जो एजुकेशन बेस्ड युग है, उसमें इन ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं लोग, और ये जो बहुत अच्छे ज्ञान हैं ये ज्ञान पीछे रह जाते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि गीता को हम एक टेक्स्ट बुक के रूप में, एक कोडिफाइड नॉलेज के रूप में समझने की कोशिश करें। अच्छा, एक प्रैक्टिशनर होने के नाते हमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो हम जो भी काम करना चाहते हैं तो एक प्रैक्टिशनर, वो भले ही डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, टैक्स प्रैक्टिशनर हो, वकील हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति को दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो थ्योरी, अगर हमें थ्योरी नहीं मालूम, अगर हमने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा ही नहीं है, या उसको पढ़ के इस तरह नहीं समझा है जो इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। हम अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर ही नहीं सकते यदि बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स नहीं। जितना ज़्यादा हमें नॉलेज होगा उतना ज़्यादा हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि एक थ्योरेटिकल मॉडल हम तैयार करें, और दूसरा होता है कि हमें वो स्किल होनी चाहिए। सिर्फ ज्ञान सफिशियंट नहीं है, हमें वो स्किल होनी चाहिए कि जो हमने थ्योरी बनाई है, जो थ्योरी का मॉडल बनाया है, उस मॉडल को हम इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं स्किलफुली, कार्यकुशलता से। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले थ्योराइज करना, जैसे किसी की टैक्स प्लानिंग करनी है तो ज्ञान को समझ के, उसके परिवार की हिस्ट्री लेके, सारी चीज़ों को समझ के हम एक टैक्स प्लानिंग की मेथड तय करते हैं, और फिर उस मेथड को इम्प्लीमेंट करके उसका असेसमेंट करा के सब कुछ बराबर भी कर देते हैं। तो एक प्रोफेशनल में दोनों स्किल्स होनी चाहिए, और श्री कृष्ण ने भी जो गीता में बताया है इन्हीं स्किल्स के बारे में बताया है। अब सबसे पहले तो हम ये समझे कि जो गीता है इसमें नया कुछ भी नहीं है। गीता, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, कि महाभारत का एक हिस्सा है। जो महाभारत ग्रंथ है, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ का एक हिस्सा है, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। गीता किसी भी रिस्पेक्ट में ये क्लेम नहीं करती है कि हमने कोई नई चीज बोली है। इसमें वो ही सब कुछ है एक कंपाइलेशन के रूप में, इसमें वही सब है एक कंपाइलेशन के रूप में, जो ज्ञान अलग अलग जगह पर फैला हुआ है। तो गीता में दो चीज़ें हैं, एक तो जो अलग अलग जगह पे जो ज्ञान फैला हुआ है उस ज्ञान का कंपाइलेशन है, कंसोलिडेशन है, और दूसरा उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में, जैसे थ्योराइज कैसे करना, ये सारे मॉडल्स, ये सारी बातें बताई गई है। और इसको इस तरह बताई गई है कि आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों चीज़ें पूरी होती हो। जैसे हमारे जितने भी भगवान हुए हैं, भगवान राम देखें, तो भगवान राम ने ये नहीं करा कि ईश्वर के एक अवतार लिया और सब कुछ ईश्वरी शक्ति से कर दिया और बात खत्म, ऐसा नहीं किया। फिर तो उनको शायद अवतार लेने की ज़रूरत क्या थी, वो तो जिन दुष्टों को मारना चाहते थे वैसे ही मार देते। लेकिन उन्होंने एक रोल मॉडल के रूप में आए कि एक मनुष्य अपनी मर्यादाओं में रहते हुए किस तरह सांसारिक बातों को पूरी करते हुए भी किस तरह आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। ये एक रोल मॉडल है, राम एक रोल मॉडल है। तो गीता भी ये नहीं कहती है कि झूठ बोलने से अच्छा रहेगा और फिर ये इस तरह से आप सफलता प्राप्त कर लें, नहीं। जो संसार में नैतिक और मॉरल रूप से जिन चीज़ों को अच्छा माना जाता है, उन सब चीज़ों को का इसमें आंसर है। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो कंसोलिडेशन है और दूसरा सांसारिक और आध्यात्मिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का एक थ्योरी बनाई गई है। अब ये जो इतना सारा ज्ञान है वो कहाँ कहाँ फैला है, पहले हम देख लें कि यानी गीता में जो कंसोलिडेशन हुआ है वो किन किन चीज़ों का हुआ है, या हमारे कौन कौन से ग्रंथ हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वेद, वेद को श्रुति भी कहते हैं। अब वेद ये नहीं मालूम है कि ये वेद किसने लिखे हैं, किसी को नहीं मालूम है कि वेद किसने लिखे हैं, और ये भी नहीं मालूम है कि जो वेद अवेलेबल हैं वो प्रमाणिक हैं या नहीं हैं। यानी आपको सुन के आश्चर्य होगा कि गीता प्रेस ने आज तक वेद नहीं छापे हैं। गीता प्रेस, जो कि इतनी धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें हजारों छाप दी उन्होंने, उन्होंने अभी तक वेद नहीं छापे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि प्रामाणिक वेद शायद अवेलेबल ही नहीं है। तो वेद का मतलब यह है कि जब ये दुनिया बनी तो इस दुनिया के क्या नियम कायदे होंगे? ये जो आकाशवाणी हुई, दुनिया बनाने वाले जो ब्रह्मा हैं उन्होंने जो इस दुनिया के नियम कायदे और सारी बातें बताई वो वेद है, और वेद एक ही था उस समय, और उस समय जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने उसको सुना। श्रुति यानी सुनना। तो जो ऋषि मुनि थे उस समय उन लोगों ने उस वेद को सुना जो ब्रह्मा ने बनाते समय, इस पृथ्वी को बनाते समय अपने नियम बताए कि पृथ्वी के क्या नियम होंगे। उसको सुनने के बाद उन्होंने दूसरों को सुनाया। उस समय लिखने की प्रथा तो नहीं थी, गुरु शिष्य परंपरा से हर ऋषि ने अपने शिष्यों को सुनाया, तो शिष्यों ने सुना श्रुति, उसने फिर सुन के अपने शिष्यों को सुनाया श्रुति। तो बहुत समय तक वेद सुन के ही चलते रहे। उसके बाद जो वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी है, उन वेद व्यास जी ने वेद को लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध करने में वेद को चार भागों में बांट दिया उनके नेचर के अनुसार, उनके सब्जेक्ट के अनुसार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेदों में इनको बांट दिया, और जब से ये लिखित रूप से वेद अवेलेबल है। वेद के बाद आते हैं वेदांत, उपनिषद, उनको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद प्रामाणिक अवेलेबल हैं, इसलिए गीता प्रेस में भी छापे हैं। उपनिषदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब 1000-2000 भी हो सकती है, लेकिन 128 उपनिषद मानते हैं कि ये प्रामाणिक है। उपनिषदों में क्या है कि जो वेद का ज्ञान है उसको एक सरल रूप से समझने के रूप से बताया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे हम इकोनॉमिक्स देखें तो भी मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स और छोटे छोटे सब्जेक्ट डेवलप हो जाते हैं ना, अलग अलग स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं। तो वैसे वेदों के वेदांत, जहाँ वेद खत्म होते हैं वहाँ उपनिषद शुरू होते हैं, बट उपनिषदों में वेदों का ही ज्ञान है। उसके बाद आते हैं स्मृतियाँ। जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए उन्होंने अपने, जैसे ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ना, अपने अनुभव लिखते हैं, तो वो अनुभव लिखे हैं मनु। मनु कहते हैं कि इस दुनिया के पहले व्यक्ति थे, पहले इंसान थे, तो मनुस्मृति नाम से एक ग्रंथ है। तो कुछ और ऋषियों ने इस तरह, याज्ञवल्क्य जी ने भी लिखी है, कुछ लोगों ने, अपने ऋषियों ने अपनी स्मृतियाँ लिखी है, अपने अनुभव लिखे हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, वो अवेलेबल हैं। उसके बाद है पुराण। इन वेदों के ज्ञान को आम जनता को सुनाने के लिए, बताने के लिए प्रवचनों के रूप में जो दिए गए थे ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञान, उनको पुराण कहते हैं। अलग अलग हैं ये भी सब्जेक्ट वाइज। और उसके बाद इतिहास ग्रंथ हैं, जो रामायण और महाभारत हैं। ये एक्चुअली हिंदू धर्म के अनुसार कोई वेद या कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये इतिहास ग्रंथ हैं। जो हिस्ट्री है वो लिखी गई है इनमें। रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। तो कुल इस प्रकार से ये पूरा हमारा जो साहित्य है, आध्यात्मिक साहित्य है, इतना बटा हुआ है। यानी मेरे ख्याल से अगर इसको एक साथ लिखा जावे तो 1-2 लाख पेजेस भर जाए, इतना तो है ये। अच्छा, अब ये जो लिखा गया है ये लोगों को सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं दे रहा था। तो धीरे 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 समाज में ये एक प्रवृत्ति आने लगी कि भाई ये ही नहीं समझ में आता है कि मानवों का जन्म ही क्यों हुआ है, ये दुनिया ही क्यों बनी है। फिर डार्विन की थ्योरी आई, पश्चिमी देशों से डार्विन की थ्योरी आई। उन्होंने कहा कि इंसान जो है, जो मनुष्य है, ये मनुष्य जाति तो एक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा है, जैसे दूसरे जीव जंतु हुए वैसे मनुष्य भी हो गया, और जो मनुष्य हो गया वो बंदर से रिलेटेड ही एक जाति है, एक उन्नत जाति समझ लो बंदरों की। और उसके अलावा ये मनुष्य कुछ भी नहीं है, ये बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है और यही है। और ये पृथ्वी और ये सारा जो वायुमंडल भी बना है ये एक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है, बना है, नष्ट हो जाएगा, ये थ्योरी है। ये जो हमारे जितने वेद ग्रंथ हैं ये इस थ्योरी को नहीं मानते हैं। ये सबसे पहले गीता में भी, जैसे गीता में इसीलिए बताया कि भगवान स्वयं हर चीज का आंसर दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ग्रंथ का कंसोलिडेशन है इसमें, तो ग्रंथ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता है। तो ये पृथ्वी जो बनी है, ब्रह्मांड बना है, ये भी अकारण नहीं बना है, इसका भी कारण है। और इन सब से अलग हटके एक सर्वमान्य शक्ति है, ईश्वर, ब्रह्मा, ब्रह्म, जो भी हम कहें, वो एक शक्ति है। वो शक्ति का जन्म नहीं हुआ है इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होना है, बट वो इससे अलग है, वो ब्रह्मांड से अलग है, और उसी के अंश के रूप में ये सारा डेवलपमेंट हुआ है। और जो बाकी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट एक अलग चीज है। मनुष्य को तो ईश्वर ने अपने ही अंश से बना के भेजा है, तो मनुष्य उन सबसे अलग है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर भेजा गया है इस पृथ्वी की रक्षा के लिए, इस पृथ्वी के उद्धार के लिए। बाकी सारी जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए, उन सबको डेवलपमेंट के लिए। तो मनुष्य तो इस धरती पे, ये कोई भी ग्रंथ आप बाइबल भी पढ़ेंगे, आप मुस्लिमों के भी कुरान भी पढ़ेंगे, सब ग्रंथों में यही बात है कि मनुष्य अलग है। मनुष्य ये जीव जंतु का ही डेवलपमेंट नहीं है। और उसका ये बात जरूर है कि मनुष्य में दो चीजें, जीव आत्मा, जीव और आत्मा। जीव का मतलब प्रकृति जो स्थूल है, और आत्मा का मतलब ईश्वर। तो इन दो चीजों के संयोग से, प्रकृति और ईश्वर के संयोग से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो डेफिनेटली जो प्रकृति से संबंधित कमियां हैं, ईश्वर तो पूर्ण है तो आत्मा तो पूर्ण है, लेकिन जो प्रकृति है वो अपूर्ण है। तो प्रकृति से संबंधित जो बहुत सारी कमियां हैं या बहुत सारी जो अच्छाइयां भी है, वो सब मनुष्य में व्याप्त है। अब इन तीन, इन चीजों को तीन गुणों में बांटा है, सत, रज और तम, और यही तीन प्रकृति के मनुष्य होते हैं। ये तीनों चीजें हर मनुष्य में होती है। सत्य है ना सात्विक, अच्छाइयां जो हैं। रज यानी एक जो बीच क्या है, और तम यानी जो खराब है, खराब चीजें हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। जो हर मनुष्य में तीनों चीजें होती है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, और वो तीनों गुणों का संगम मनुष्य में भी है, जिसमें जो अधिकता होती है वो उस प्रकृति का मनुष्य कहलाता है। जिसमें सत्गुण ज्यादा है तो सात्विक कहलाता है, रजगुण ज्यादा है। रजगुण क्या होता है, आदमी को बिजी रखता है, बिना बात उसको यानी चैन नहीं पड़ता, बैठ नहीं सकता सीधे, कुछ ना कुछ करते ही रहना है, सही गलत जैसा भी हो, बट वो बैठ नहीं सकता है। और तम यानी तो तामसी प्रवृत्ति, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो कि मनुष्य को इस डेवलपमेंट के जो ईश्वरीय नियम है उसके विरुद्ध ले जाती है। अब ये गीता के बारे में जो फेडरेशन की अपने न्यूज़लेटर आता है उसमें जनवरी 2006 से 3-4 सीरीज में ये आर एच पाटिल साहब का ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो आप लोग जो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हों वो इसको भी पढ़ सकते हैं, ये एक पेपर के रूप में आपके सामने हो सकता है। अब गीता में जो है वो 18 अध्याय हैं और कुल है 700 श्लोक। 700 श्लोक में जो पहला श्लोक है वो श्लोक का पहला वर्ड है धर्म, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता युत्सव, माम कहा पांडवाश्च किम अकुरुत्सव संजय। और जो आखिरी श्लोक है जो संजय बोलता है, यथा योगेश्वर कृष्णो यथा पार्थो धनुर्धर तथा शीर विजयो भूतिर्ध्वा नीतिर मतिर मम, तो आखिरी वर्ड जो है इसमें वो है मम, मेरा। तो गीता जो पूरा ज्ञान है वो मेरे धर्म, मेरा क्या धर्म है उसके बारे में बात करती है। या इस पृथ्वी में धर्म का राज्य होना चाहिए जबकि मेरा राज्य है, तो खत्म होती है मम से, शुरू होती है धर्म से। होना क्या चाहिए? धर्म। अब सवाल है कि धर्म यानी क्या? धर्म यानी क्या? ये पूजा पाठ क्या धर्म का मतलब माला पढ़ने से है? नहीं। धर्म की जो डेफिनेशन सर्वमान्य है शास्त्रों में और जो गीता प्रतिपादित करती है वो है स्वार्थ और परमार्थ दोनों जिससे साध्य होते हैं वो धर्म है। देखिए जैसे शेयर मार्केट में दो बीमारियां बोलते हैं, फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। जब मार्केट अच्छा चलता है तो हर व्यक्ति लालची है, उसको और लालच आता है, और बढ़ेगा, और होगा, और होगा। और जैसे ही मार्केट खराब हुआ वो बहुत डर जाता है और वो नहीं बेचने वाले शेयर्स भी बेच देता है। तो जैसे ये शेयर मार्केट में दो गड़बड़ हैं, वैसे मनुष्य में भी दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हर मनुष्य स्वार्थी है, हर मनुष्य, दुनिया का कोई मनुष्य नहीं कह सकता, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन स्वार्थ हर व्यक्ति में है। और स्वार्थ होना अच्छी भी बात है, स्वार्थ के कारण तो यानी जीवन में इंस्पिरेशन है। और दूसरा जो हर मनुष्य में प्रॉब्लम है वो है अहंकार, दम्भ। और ज्ञान का भी सबसे बड़ा दोष है अहंकार। कहते हैं कि इस पृथ्वी में रावण से बढ़ के तो कोई ज्ञानी ही नहीं हुआ आज तक पृथ्वी में। और रावण की यह हालत है कि कोई अपने किसी ने बच्चे का नाम अभी तक रावण नहीं रखा इतनी, जबकि उससे ज्ञानी उससे पंडित तो कहते हैं इस पृथ्वी पे कोई नहीं हुआ। तो ज्ञानी कहाँ मात खा जाता है? ज्ञानी मात खा जाता है अहंकार में। तो दुनिया में हर व्यक्ति, यानी बाइबल की भी जो पहली कथा शुरू होती है कि पहले जो ईडन गार्डन में एडम एंड ईव, आदम और हव्वा जो आए थे, तो ईश्वर ने उनको कहा कि भाई तुम मेरे अंश हो, ये पृथ्वी मैंने बनाई है तुम्हारे सुख के लिए, यू एंजॉय। लेकिन ये जो ये गार्डन में सब कुछ खाना पीना तुम, लेकिन ये जो एक एप्पल टाइप का फल है ये ज्ञान का फल है, इसको मत खाना, इसको खाया तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, नहीं खाया बहुत दिनों तक, बट वो जो हवा थी वो ललचाती रहती थी कि ये तो बड़ा अच्छा फल है, इसको क्यों नहीं खाएं। वो अपने आदमी को कहती थी कि तुम खाओ, खुद नहीं खाती थी उसको कहती थी कि आप खा लीजिए इसको। अब वो बड़ा एक दिन परेशान हो गया, वो आदमी ने खा लिया फल और उसको ज्ञान आ गया। बस ज्ञान आते से ही उसके दुखों की सारी चीजें शुरू हो गई। तो हर व्यक्ति में स्वार्थ और अहम ये दो चीज होती ही है। तो धर्म ऐसा अगर आपने बनाया कि आप अपना स्वार्थ छोड़ के सिर्फ परमार्थ ही करो तो शायद है कि ऐसा धर्म कोई भी स्वीकार नहीं करेगा या बहुत कम रूप में स्वीकार करेंगे। तो धर्म की सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है जिसमें स्वार्थ भी सिद्ध होता है, आपको भी अच्छा लगता हो और परमार्थ भी सिद्ध होता हो, दूसरों के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया इसलिए कि आप इस पृथ्वी का भरण पोषण डेवलपमेंट ये सब कुछ करें। तो ये एक बात आती है। दूसरा, एक बार गांधी जी से पूछा था कि आप बताएं कि गीता, गांधी जी हमेशा अपने साथ रखते थे, गीता इतना महत्वपूर्ण है, ये तो एक पूरा कैप्सूल टाइप कंसोलिडेशन है ना, और गीता में त्याग की बात करी है कि भाई आदमी सब कुछ अपने पास ही नहीं रख ले, समाज के लिए भी करे। तो मानव गीता में आपको कोई हिंदू शब्द कहीं नहीं मिलेगा, हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, हिंदू शब्द ही नहीं है। ये तो कहते हैं कि हम मानव समाज और ये पूरी जो पृथ्वी है इसको एक परिवार मानते हैं और इस एक परिवार के भले के लिए काम करना है हर व्यक्ति को। तो गांधी जी से भी पूछा था कि गीता को यदि आपको एक शब्द में डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, सिंपल है, उल्टा कर दो इसको, त्यागी त्यागी त्यागी, जो त्यागी है वो गीता को फॉलो कर रहा है। ज्ञानेश्वरी जो महाराष्ट्रियंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, ज्ञानेश्वरी क्या है, ज्ञानेश्वरी गीता का टीका टिप्पणी है मराठी में, एक एक श्लोक पे मराठी की टीका टिप्पणी है, ज्ञानेश्वरी और कोई ग्रंथ नहीं है, गीता ही है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं हिंदुस्तान में स्वतंत्र भारत में, उन्होंने भी जो अपना मुख्य ग्रंथ लिखा है वो गीता पे ही आधारित टीका टिप्पणी लिखी है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है बार बार कि जब गीता इतना अच्छा ज्ञान है तो फिर इस ज्ञान को कृष्ण भगवान ने एकदम युद्ध के मुहाने पे अर्जुन को क्यों दिया? अरे वो युद्ध के पहले तो 12 साल तो पांडव लोग वनवास में थे, 1 साल अज्ञातवास में थे, 13 साल फ्री थे बिल्कुल, उसमें कृष्ण आराम से बिठा के ज्ञान दे देते ना। तो एकदम युद्ध भूमि में, युद्ध के मुहाने में शुरू होने वाला है युद्ध और गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर तो ये है कि अच्छा ज्ञान कभी भी दिया जा सकता है, उसके लिए कोई वक्त, उसके लिए कोई टाइम, उसके लिए कोई परिस्थिति नहीं इम्पोर्टेंट होती है, वो तो कभी भी दिया जा सकता है। और दूसरा ये है कि ज्ञान आपने तभी देना चाहिए, दूसरा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज्ञान आप में तभी दिया जाना चाहिए जब सामने वाले में ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो, शिष्यत्व भाव आवे, तो ही वो ज्ञान। तो जब अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया, गांडीव हाथ से छूट रहा है, हतोत्साहित हो गया और जाके रथ के पीछे बैठ गया कि अब मेरे को युद्ध नहीं करना, मैं तो हताश हूँ, मैं तो निराश हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे हाथ पांव फूल गए हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे ज्ञान दें, तो कृष्ण ने ज्ञान दिया। तो ज्ञान यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ज्ञान ऐसे ही नहीं बांटते रहना चाहिए, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है अंटिल एंड अनलेस कि उसको उसकी ज़रूरत लगे, जब ज़रूरत लगे तो उसके लिए वो सलाह, वो ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें हम कुछ एक मॉडल पे आते हैं जो मुख्य मॉडल है गीता का, उस पे आते हैं। पहली चीज है जो हम प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा मैंने बताया कि सफलता प्राप्त करना, ये तो हर व्यक्ति चाहता है ना? एक बार हमने डिस्कस किया था जब सिंह साहब, एसबी सिंह साहब, उसको मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। सफलता तो हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, और गीता में आप जहाँ भी आप गीता का नाम देखेंगे तो आपको एक श्लोक हमेशा मिलता है, कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन, माँ ने नहीं मत, माँ ने मदर नहीं, कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भू माँ संगोस्त, तो इस श्लोक में से ये मीनिंग निकाला जाता है कि कृष्ण भगवान ने शायद ये कहा कि कर्म से ही मतलब है, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेशन इज नॉट नेसेसरी, ऐसा ही लगता है ना। अब हमारे पीएफ ड्रकर साहब जो मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु अभी तक हुए हैं अमेरिकन, इनकी अभी साल दो साल पहले ही डेथ हुई है 95 साल की एज में, पीटर एफ ड्रकर। और सीए में जब हम लोग पढ़ते थे तो इंटरमीडिएट में ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट था जो पीटर एफ ड्रकर की किताब थी। तो पीटर एफ ड्रकर को सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसलिए मिली कि उन्होंने मैनेजमेंट की बेसिक थ्योरी बताई, रिजल्ट ओरिएंटेशन। मतलब ये तो ठीक है कि आप अच्छा काम करो, लेकिन ये तो देखो कि आपने शाम को कुछ कमाया धमाया भी कि नहीं। भाई बिजनेस तो अच्छा करा, बहुत ईमानदारी से करा, बहुत सब कुछ करा, लेकिन सी टू इट दैट व्हाट इज द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे। यदि ये रिजल्ट अच्छा नहीं है तो यू चेंज योर थ्योरीज, यू चेंज योर मेथोडोलॉजी, यू चेंज योर अप्रोच, यू चेंज योर बिजनेस ऑल्सो। तो लोगों को ऐसा भ्रम हुआ कि ये क्या बात हुई, गीता में तो कृष्ण कह रहे हैं कि कोई रिजल्ट से मतलब ही नहीं है। और पी एफ ड्रकर की सारी थ्योरी जिससे अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज ने इतनी तरक्की करी है वो तो रिजल्ट ओरिएंटेशन की थ्योरी से तरक्की करी है। तो क्या पी एफ ड्रकर कृष्ण से भी बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं? नहीं नहीं, कृष्ण बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, पी एफ ड्रकर नहीं है। कृष्ण ने जो कहा है, ये जो श्लोक कहा है, ये कॉन्टेक्स्ट में कहा है। कृष्ण तो हमेशा रिजल्ट की तरफ ही जाते थे। आपको याद होगा कि हर जैसे भीष्म को मारना ही मुश्किल हो रहा था, तो कृष्ण समझाइश देते थे कि भीष्म को कैसे मारना। द्रोणाचार्य को तो कोई मार ही नहीं पा रहा था, तो चाल चली गई एक अश्वत्थामा वाली, और फिर द्रोणाचार्य को मारा गया। तो ये चालें क्या जीतने के लिए ही तो चली गई थी, है ना? तो रिजल्ट ओरिएंटेशन तो था ना। कभी कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध करो, युद्ध करने कौन आया था आप बताइए? कृष्ण तो शांति दूत बन के गए थे, और अर्जुन और ये पांडव नहीं सारे, यानी ये लोग कृष्ण के पास भी गए थे, कौरव भी आए थे, पांडव भी आए थे, और कृष्ण के पास गए थे कि आप हमारी तरफ से लड़िए, ठीक है ना? तो पहली बात तो ये समझ लें कि यानी ये युद्ध लड़ा जाए ये कृष्ण ने नहीं कहा था, ये उस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। युद्ध भूमि ने जरूर कहा कि अब वापिस नहीं जाना, अब तो लड़ना पड़ेगा, बट पहले कभी नहीं कहा कि लड़ना है तुझे, तुम अपनी मर्जी से लड़ने आए। अब लड़ने आने के बाद में आप बिना लड़े जाओगे तो ये सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से खराब है। क्यों सांसारिक रूप से क्यों खराब है? इसलिए खराब है कि यही लोग जो यहाँ तुम्हारे कहने पे इकट्ठा हुए हैं, तुम युद्ध छोड़ के जाओगे, तो ये नहीं बोलेंगे कि अर्जुन बहुत महाबली है, वो तो कहेंगे कायर है, डरपोक है, युद्ध को पीठ दिखा के चला गया। और आध्यात्मिक दृष्टि यानी वो धर्म की दृष्टि, धर्म की दृष्टि क्या है? स्वार्थ के साथ परमार्थ भी हो। भाई कौरव हैं, उनके कारण जनता त्रस्त है, ये लोग अच्छा राज्य नहीं कर रहे हैं। तो अगर तुम जैसे व्यक्ति राज्य संभालोगे तो जनता का भला होगा, मानव कल्याण होगा। तो धर्म की दृष्टि से भी ये ठीक है कि लड़ो, और अगर नहीं भी रहे तुम तो कोई बात नहीं, क्षत्रिय यदि मर भी जाए युद्ध में तो उसको तो स्वर्ग मिलता है, अमर हो जाता है, वो तो मर के अमर हो जाता है। तो किसी भी दृष्टि से तुम्हारा ये युद्ध भूमि छोड़ना ठीक नहीं है। और अब एक बार यदि तुमने ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये जीतना है, उसके लिए लड़ने आ गए, इसके बाद अब जीतूंगा हारूंगा वो सब चीजें हटा दो, क्योंकि अगर वो चीजें ध्यान में रखोगे काम करते समय ऑब्जेक्टिव ही ध्यान में रहेगा। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वो इसलिए फेल्यूर हो जाता है कई बार कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा हावी हो जाता है। तो जो आदमी को कार्य करना है वो मेरिट पे नहीं करके ऑब्जेक्टिव को देखता रहता है कि अरे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए उस समय उन्होंने कहा कि युद्ध लड़ते समय, कार्य को करते समय, जैसे अगर हम एक इनकम टैक्स का बढ़िया केस प्रिपेयर करते हैं और अथॉरिटी के पास ले जाते हैं, उसमें 2 लाख रुपए फीस मिलने वाली अपना डिसाइड हो गया, अथॉरिटी के सामने ले जाएं और वो कोई भी बात जरा सा भी ऑब्जेक्शन ले और हमको लगे 2 लाख गए और वो केस के मेरिट छोड़ के हम सिर्फ वो 2 लाख पे ध्यान रखते रहें, तो क्या हम अच्छा काम कर पाएंगे, क्या हम अच्छे आर्गुमेंट कर पाएंगे, क्या हम अपना कार्य कुशलता से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वही तो कृष्ण ने समझाया कि भाई यहाँ आने के बाद अब तुमको अपना ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है तो सिर्फ एक ही चीज सोचो कि तुम में जितनी क्षमता है, जितनी कार्य कुशलता है, जितना एक्सीलेंस है, जितनी ताकत है, वो इसमें झोंक दो और हर चीज को भूल जाओ। यहाँ तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, फल में नहीं है। फल जो होगा वो तो मिलेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है। तो पीएफ ड्रकर और कृष्ण दोनों ही अच्छे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं और रिजल्ट ओरिएंटेशन वाली बात दोनों में है, ये हम समझ लें। बट प्रिंसिपल ये है कि एक बार हमने थ्योराइज कर ली चीज, एक बार अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, फिर काम करते समय वो ऑब्जेक्टिव को बार बार यदि उसी में उलझे रहेंगे तो हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। फिर हमको भूलना पड़ेगा और काम को हम ये सोचेंगे अरे इसमें इतनी मेहनत क्यों करो, 200 रुपये तो देगा वो। अगर मान लो कोई केस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है और आप ये सोचो कि अब मैं क्यों मेहनत करूं, तो वो कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। एक बार आपने काम का बेड़ा उठा लिया तो अब काम काम के मेरिट पे होना चाहिए, इन कंसिडरेशंस पे नहीं होना चाहिए। ये सब करना था तो पहले कर लो, बट वंस यू हैव टेकन, कितनी अच्छी बात हम प्रोफेशनल्स के लिए हैं, कितनी अच्छी बात हम प्रोफेशनल्स के लिए हैं कि एक बार यदि हमने कोई काम अपने हाथ में ले लिया, फिर उसको हमको ये सब चीजें भूल के उस काम को उसके मेरिट पे करना है तो हमारी कार्यकुशलता कितनी बढ़ जाएगी और उसका हमें कितना फायदा मिलेगा। ठीक है, उस काम में हमें कम पैसे मिले। पालखीवाला जी का मैंने पढ़ा है कि वो अपने असिस्टेंट्स को, अपने सहयोगियों को कहते थे कि भाई आप देख लीजिए कि कोई ऐसे व्यक्ति जिनका इश्यू लीगली इम्पोर्टेंट हो लेकिन जो मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन इश्यू इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, अगर वो इश्यू कोर्ट से सेटल होगा तो हजारों लाखों लोगों को फायदा मिलेगा, लॉ का अच्छा इंटरप्रिटेशन होगा, तो आप ऐसे इश्यू को लेके आओ, मैं बिना फीस के लड़ूंगा। उनका उद्देश्य ये रहता था कि हम कानून के द्वारा उन चीजों को क्रिस्टलाइज कर लें जो सही है, वो केसेस वो हाथ में लेते थे। कितने केस, पालखीवाला जी का जितना नाम है साल में कितने केस करते थे? मेरा ख्याल है कि आखिरी आखिरी में तो 2-4 साल में 1-2 केस करते थे, कभी तो अमेरिका में एम्बेसडर बन के चले जाते थे। पर चूंकि उनका उद्देश्य महान था और उस और जबकि ऐसा नहीं है वो फीस नहीं लेते थे, जो फीस लेते थे वो तो 2-4 बार देश के हाईएस्ट टैक्स पेयर रहे हैं, तो उतनी फीस भी चार्ज करते थे। उन्होंने ही सिखाया कि पर मिनट फीस चार्ज करनी चाहिए कंसल्टेशन की, ये पालखीवाला जी ने सिखाया। लेकिन अगर वो फीस ले ली या वो काम फ्री में भी ले लिया, उसके बाद उनका उद्देश्य रहता था कि काम को काम की दृष्टि से करना, उसके अलावा कुछ नहीं सोचते थे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत जबरदस्त प्रिंसिपल है जो हमको यहाँ से सीखने को मिलता है। अब दूसरी बात आती है कि काम करने का ढंग क्या होना चाहिए, इस पे एक मॉडल बनता है। काम के तीन स्टेजेस होती है। आप ये आइडिया वाले का एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। यस, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। सबसे पहली बात होती है कि हम जो कुछ भी करते हैं, गीता में कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सुनता रहेगा, सोता रहेगा, समझ सोते में भी सपने आ जाएंगे, इधर सोचता उधर सोचता। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता एक क्षण भी, लेकिन चॉइस उसकी है कि कर्म क्या करे वो। तो ये जो हमारा दिमाग है ना, ये हमेशा एक्टिव रहता है। मतलब एक जगह मैंने पढ़ा था कि ये जो दिमाग है, माइंड है, ये ड्रंकर्ड मंकी जैसा है। यानी केले ही बंदर तो बहुत शैतानी करता है, बंदर निचला थोड़ी बैठ पाता है, और वो यदि और शराब पी ले तो उसकी क्या हालत होगी चपलता की। तो ये माइंड भी ऐसे ही है, ये कुछ ना कुछ आपको हमेशा कहता रहता है, गाइड करता रहता है। अच्छा, इसने आपको ऐसा देखा, अब आप भी उसको ऐसा देखिए। अच्छा, रामनानी जी ने ऐसा बोला, अब आप इनको ऐसा बोलिए। इनने ऐसा किया, आप इनको ऐसा करिए। ये माइंड आपको गाइड करता रहता है, आपको दौड़ाता रहता है, भगाता रहता है, समझाता रहता है, न जाने क्या क्या। तो वो सब चीजें आपको पहला तीन स्टेजेस काम करने की जो है, उसमें पहली स्टेज है माइंड सेट बनाना। आप अपने दिमाग में, अंतर मन में वो चीजें भरे। आप नहीं भरेंगे तो अपने आप भरती जाएगी। जैसे मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन क्या प्रक्रिया है? मेडिटेशन की प्रक्रिया है कि जो आप में कूड़ा करकट भरता जा रहा है उसको निकालो। जो भी आपको मेडिटेशन सिखाता है वो सबसे पहले ये कहता है कि जो विचार आए उनको रोकना मत, उनको जाने देना। एक्चुअली मेडिटेशन छोड़ दें तो ऐसी कोई प्रोसेस ही नहीं है निकालने की। दिमाग में तो हर चीज आती ही जाती है, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जाता ही रहता है। अब ये जो गया है यही तो आपको गाइड करेगा। अब ये आप किसी भी चीज को जाने दे रहे हैं इसमें, तो अंतर मन अच्छा बने ही नहीं। इसलिए गीता में कृष्ण भगवान पहली चीज कहते हैं ज्ञान योग। तीन योग की बात है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो पहली स्टेज है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है कि आप प्रोएक्टिवली, हिंदुस्तानियों के बारे में कहा जाता है कि हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव है मतलब जब तक हमने सिर पे नहीं पड़ जाए तब तक कोई काम नहीं करते हैं। वो प्रोएक्टिव क्या होता है? जो आगे बढ़ के काम करता है कि मुझे ये करना है, तो वो उस समय का इंतजार नहीं करता है कि ये मजबूरी बने तब करूं, वो स्वयं आगे बढ़ के उस काम को करता है। तो ज्ञान योग मतलब आप प्रोएक्टिव एक्शन लेके अपने दिमाग में उन चीजों को भरो जो आप चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं, एक अच्छा टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो एक टैक्स प्रैक्टिशनर अच्छे में जो जो रिक्वायरमेंट आपको मालूम है उन चीजों को अपने दिमाग में बैठाओ, भरो प्रोएक्टिवली। वैसा आप सोचो, वैसा आप समझो, थ्योराइज करना है ना, सारी चीजें भरो कि भाई एक ऐसा व्यक्ति को का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, तो आप अपने दिमाग में भरो इन चीजों को कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे लिया जा सकता है। खूब पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने की आदत या पढ़ने का टाइम अलोकेशन कैसे हो, इन चीजों को आप अपने दिमाग में डालो। अच्छा ओरेटर होना चाहिए, अच्छा एनालिस्ट होना चाहिए। लॉ में एनालिसिस करना नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, आप क्लाइंट को डांटते रहोगे तो कितने ही अच्छे वकील हो, क्लाइंट्स नहीं आएंगे, रह जाएंगे आपके पास से। तो सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी काम की सफलता के लिए, अपने माइंड सेट को बनाना बाय प्रोएक्टिव एक्शन। इन्हें भगवान ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर आपको मुझे पाना है तो आपको ज्ञान और बुद्धि से परे जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ ज्ञान को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान बोला है। सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान में तो मैंने बताया ना कमियां होती है, अभिमान होता है, ज्ञान में एक और कमी होती है, दूसरों के दोष बहुत जल्दी दिख जाते हैं, क्योंकि आप तो ज्ञानी हो ना तो आप झट से दूसरों के दोष पकड़ लेते हो। आप ज्ञानी हो ना तो अपने ज्ञान का सबसे पहला उपयोग अपने स्वार्थ में करते हो, क्योंकि आप तो जानते हो। तो ज्ञान के तीन दोष होते हैं, ज्ञान स्वार्थी बनाता है, ज्ञान अहंकारी बनाता है, और ज्ञान दूसरों से वेर कराता है क्योंकि उनके दोष आप देखने लग जाते हो। तो अब चूंकि ये गीता एक स्पिरिचुअल वे में लिखी गई है, इसलिए इसमें यहाँ जो ज्ञान योग बताया गया है वो मैंने तो अकेडेमिक्स के हिसाब से बता दिया, बट यहाँ जो बताया गया है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ उन्होंने कहा है कि ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान का मतलब, या जो दिमाग में बैठाने वाली बात है, उसका ये मतलब है कि सबसे पहले तो आप ये मानो कि मैं एक व्यक्ति नहीं एक आत्मा हूँ। अर्जुन को भी शुरुआत वो वहीं से करते हैं कि आत्मा थोड़ी मरती है कभी, ये तो शरीर है, ये भीष्म मर गया मर गया, भीष्म की आत्मा थोड़ी मर रही है, द्रोण जा रहे मर गए उनकी आत्मा थोड़ी मर रही है, तो तू किसी को नहीं मार रहा है, तो शरीर है तो जाएगा ही, आज निकल जाएगा, आत्मा किसी की तू मार भी नहीं सकता है, तो तू कोई पाप नहीं कर रहा है, तू कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। तो पहली चीज ज्ञान योग की होती है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। दूसरा, ये जो आत्मा है ये परमात्मा का एक अंश है, तो मेरे और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। ये बाद में सभी शंकराचार्य ने भी और बाकी लोगों ने भी इसको कहा कि ये दो अलग अलग नहीं होते हैं, आत्मा और परमात्मा एक ही होती है। जैसे आपका घर का टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, वैसे ये भी जुड़ा हुआ नेटवर्किंग है पूरा। और तीसरा ये है कि चूंकि आप आत्मा हैं, चूंकि आप ईश्वर का एक अंश हैं, इसलिए आप जो भी काम करें वो काम बिना लिप्त हुए इस संसार से एक डिस्टेंस बना के करें, जो भी काम करें तो बिना लिप्त हुए और बिना फल की आशा के करते रहें। ये ज्ञान योग हुआ। बट ज्ञान योग हमने कैसे समझना है कि कोई भी काम जिसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है उसमें हम सबसे पहले एक माइंड सेट डेवलप करें बाय प्रोएक्टिव एक्शन। उसके बाद दूसरा आता है कर्म योग। ये काफी कुछ हमने समझ लिया कि काम करते समय ये एक अवेयरनेस रखें। देखिए, सुबह से आदमी सोचता है कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब पी के मैं पगला जाता हूँ, मैं घर में झगड़ा करता हूँ, मैं अपनी कमाई, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं उनको नहीं देके शराब में उड़ा देता हूँ, दोस्तों में उड़ा देता हूँ। सुबह से वो बिल्कुल अपना मन पक्का करता है, माइंड सेट बनाता है कि मैं आज शराब नहीं पीऊंगा, और शाम होती है और वो पहुंच जाता है। तो सिर्फ माइंडसेट बनाने से काम नहीं चलेगा। हम सोचें कि हाँ अच्छा स्वस्थ होना चाहिए प्रोफेशनल को, मृदुभाषी होना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, तो माइंडसेट बना के पूरा अपन ने प्लान आउट कर लिया, लेकिन फिर वो आए चलो बोले वहाँ खेलने चलते हैं, वहाँ ये करने चलते हैं, और चल दिए, और आज चल दिए, कल चल दिए, दो चार दिन में फिर ये सब माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। तो दूसरा होता है कर्मयोग, कि काम करते समय आप में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने सोचा है उसको मैं वैसा इंप्लीमेंट करूं। मैनेजमेंट में भी तीन चीजें होती है ना, बेसिक प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, अगेन पीएफ ड्रक है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। एग्जीक्यूशन यानी ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। तो पहले प्लान आउट करो, है ना, माइंडसेट वाली ये पूरी प्रोसेस है, पेपर पे ले आते हो, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में अवेयरनेस, देखिए अर्जुन माइंडसेट बना के आया, युद्ध करने आया, जीतने आया, उसको सब मालूम है कि भीष्म से ऐसे लड़ना है, द्रोणाचार्य से ऐसे लड़ना है, इसको ऐसे करना है, उसको ऐसा करना है। मतलब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो महाभारत में यदि सबसे ज्यादा डर कौरवों में था किसी को, दुर्योधन को, तो अर्जुन का डर नहीं था। आप दुर्योधन को डर था भीष्म भीम का। गीता में भी वो कहता है, भीष्म के पास जाता है दुर्योधन, तीसरे चौथे श्लोक में ही है, और वो कहता है कि आपसे रक्षित हमारी सेना, वो भीम से रक्षित पांडवों की सेना। अर्जुन तो हीरो बाद में बना है शायद कृष्ण के कारण, बट जो भीम था वो सबसे शक्तिशाली था पांडवों में। और दुर्योधन बिल्कुल क्लियर था कि अर्जुन से लड़ने के लिए तो मेरे पास भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, ये सब यानी अर्जुन से लड़ लेंगे, बट भीम से तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा और मैं कमजोर पड़ता हूँ ये भी डर था। तो कहने का मतलब है कि जब काम का वक्त आता है, जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है, तो आदमी का माइंडसेट जो बनाया गया है वो चेंज होने की पूरी 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 संभावना रहती है। तो कर्म योग का मतलब होता है कि इम्प्लीमेंटेशन के समय वो अवेयरनेस बनी रहे। वो अवेयरनेस तभी बनी रहेगी जब कर्म करते समय वो हैमरिंग होगा। अर्जुन भूल गया था, वो हैमरिंग कृष्ण ने किया। तो अगर यानी हम सारा कुछ पढ़ के जाएं और आईटीओ ने कोई दो तीन ऐसी उल्टी सुलटी बात कर दी तो हम अपना ज्ञान छोड़ के कुछ और ही डिस्कस करने लग जाएं, या हमें लगे कि जो हम प्रिपेयर करके लाएं शायद वो ये नहीं मानेगा, तो वैसे मेरिट्स नहीं छोड़ें। जो आप एक माइंडसेट बना के, ठीक है उसको समयोचित जो एडजस्टमेंट करना है वो कर लें, लेकिन आप ये सोच लें, नॉर्मली ऐसा होता है जो चीज आप ज्यादा अच्छी कंटेस्ट करते हो सबसे पहले आप उसी चीज को छोड़ते हो। ये मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 10 में से 9 बार ऐसे ही बार ऐसा होता है कि जब आप माइंड में सोचते हो कि ये ठीक है और ये कम ठीक है, और आपसे पूछा जाए तो जो कम ठीक है वो आंसर दोगे आप, 10 में से 9 बार ऐसा होता है 90%। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको सही लगती है उसमें वैसा कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता है, और आपको लगता है कोई ये गलत नहीं निकल जाए तो कम गलत वाले को फट से बोल देते हो, उस पर तो उतना वर्क ही नहीं हुआ। जो लोग सालों से शेयर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लेने में घबराते हैं, और जो नए नए आते हैं वो फट से खरीद लेते हैं क्योंकि वो बैकग्राउंड ही नहीं है। फूल्स रश इन, फूल्स रश इन एक अंग्रेजी में कहावत है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स आर अफ्रेड टू वॉक। जहाँ ईश्वर को चलने में भी डर लगता है वहाँ बेवकूफ तो दौड़ जाते हैं। तो काम करते वक्त वो अवेयरनेस बनी रहे, ये दूसरा सिद्धांत बनता है, और वो एक कॉन्शियस अटेम्प्ट होगा तो बनी रहेगी। अगर वो कॉन्शियस अटेम्प्ट नहीं हुआ तो वो अवेयरनेस नहीं बनी रहेगी। और ये सारी यानी आपने कई विद्यार्थियों का सुना होगा कि खूब पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं, लिखा ही नहीं जाता। तो वो अवेयरनेस यदि बनी रहे, वो प्रैक्टिस यदि बनी रहे तो हो सकता है। और तीसरा होता है भक्ति योग। भक्ति योग का सिंपल मतलब है कि धर्मानुसार आप चलें, जो आपको सफलता मिलती है वो आप अकेले नहीं खा जाएं, उसमें समाज का भी हिस्सा है, वो समाज का हिस्सा देना। इसमें कृष्ण कहते हैं कि ये जो सब कुछ बनाया है ये मैंने बनाया है, देवताओं से आप यज्ञ करके देवताओं से हिस्सा लेते हैं, और वो हिस्सा मिलने के बाद वो देवताओं को वापस भी दीजिए, आप अकेले मत खाइए। देवताओं से मतलब मैं भी तो देवता हूँ ना, मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, आप भी ईश्वर के अंश हैं। तो एक देवता दूसरे देवता को दे, दूसरा देवता एक ये पहले देवता को दे, इन्हें पूरा मानव समुदाय एक दूसरे के सहयोग समन्वय से चले और ईश्वरीय गुणों को विकसित करें। ईश्वरी गुण क्या होते हैं, जैसे प्रकृति के तीन गुण बताए ना मैंने, जीव आत्मा में दो चीजें हैं, तो प्रकृति जीव यानी प्रकृति, प्रकृति के तीन गुण क्या हुए, सत रज और तम, इनके इन तीनों गुणों में के दोष भी हैं जो अभी अपन ने थोड़ा डिस्कस किए थे। लेकिन जो ईश्वरी तीन गुण होते हैं जो हम में हैं, उनमें दोष नहीं होते हैं, वो गुण ही होते हैं। ईश्वर के तीन गुण क्या हैं, सत चित और आनंद, सच्चिदानंद कहते हैं ना, सच्चिदानंद इसीलिए कहते हैं कि ये ईश्वर के तीन गुण हैं जो हमने भी होते हैं। सत को हम प्राप्त करते हैं ज्ञान योग से, सत का मतलब होता है सत्ता, यानी ये पूरे जो ब्रह्मांड है इसमें जो सत्ता है वो किसकी है, ईश्वर की है, ईश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता है यहाँ। तो ये ईश्वर की सत्ता है, ये हम कैसे जान सकते हैं, ज्ञान योग से, कि हम आत्मा हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है और वो ही सब नियंत्रित करता है। चित, चित मतलब अवेयरनेस, वो हम काहे से प्राप्त करते हैं, कर्म योग से। और आनंद, आनंद हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब अपनी सफलता को मानव समुदाय के हित में काम करेंगे, मानव समुदाय के कल्याण के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में शुरू से दशांश की एक परंपरा है कि आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा समाज के लिए दीजिए। अगर हर व्यक्ति अपनी कमाई का 10% हिस्सा समाज के लिए देगा तो समाज की उन्नति होगी। देखिए अभी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हमारे यहाँ हो रहा है, ये चूंकि इन प्रिंसिपल्स पे नहीं हो रहा है, हम गांधी गांधी तो बोलते हैं लेकिन गांधी का मॉडल तो अपनाते ही नहीं है। गांधी का मॉडल क्या है, गांधी का मॉडल चरखा उसका प्रतीक है कि प्रोग्रेस नीचे से ऊपर जानी चाहिए। घर घर में आप कारोबार दे दो, चरखा कोई भी चला सकता है, उसको कमाई होगी, उसके कपड़े बनेंगे, वो कपड़े सब जगह बिकेंगे, तो पूरा यानी जो धन है वो ऊपर से नीचे तक बटेगा, बॉटम अप अप्रोच है। अभी हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो अमेरिकन पैटर्न का हो रहा है, टॉप डाउन अप्रोच, जो पूरा धन की वर्षा हो रही है वो पहले 10% लोग समाज के 5% वो पहले झेल लेते हैं, उसके बाद जो नीचे आता है उसमें हम जैसे 20% लोग फिर रख लेते हैं, जैसे वो दाल मिल में चालने लगे होते हैं ना फिर 70% लोगों में वो 10% चूरी जाती है। तो क्या ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं हो सकता, लॉन्ग रन में मॉडल सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो इसका बंटवारा, इस मॉडल का ये अच्छा ही है कि इसमें वेल्थ जनरेट होती है, लेकिन इस मॉडल का दोष क्या है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है प्रॉपर। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो सकती है, देखिए। और ये प्रिंसिपल कैसे अमेरिका में जा रहा है, बिल गेट्स कह रहे हैं कि अब मैं रिटायर होके, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स कह रहे हैं कि अब मैं रिटायर होके अर्ली रिटायरमेंट लेके फिलैंथ्रोपिक ये सब ये धार्मिक काम करूंगा। वर्ल्ड के जो सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफेट, उन्होंने 80% ऑफ वेल्थ 2,00,000 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में, वो कहा है कि ये सब इस बिल गेट्स फाउंडेशन को चली जाएगी और ये सारा काम धर्म के लिए किया जाए। ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ मैं। तो समाज को आपको बांटना तो पड़ेगा, अगर हम समाज, ये भक्ति योग है, आप वो ज़्यादा आध्यात्मिक और उसमें हम नहीं जाएं, हम तो अकेडेमिक समझें। तो माइंडसेट तैयार करें, इम्प्लीमेंटेशन के समय अवेयरनेस तैयार करें, अवेयरनेस रहे और उसकी सक्सेस को बांटें। मुस्लिम्स में देखिए जकात, जकात क्या है, दान दीजिए आप समाज के लिए, ये पानी के लिए, ये जो सारा आप देखते हैं ना ताजिए के दिन सब जगह शरबत और पानी और ये पिलाया जाता है, तो इसकी यही कथा है कि ये जो पानी के जितने सोर्सेस थे उस पर धनी लोगों ने कब्जा कर लिया। भाई आगे यही होगा, अगर रिलायंस सब्जी बेच सकता है तो कल सारी नदियां भी खरीद सकते हैं, सारी नदी खरीद के वो पानी बेचेगा 5 रुपए बाल्टी, आपको चाहिए तो लीजिए, पीने का पानी जिसको नहीं मिल रहा है मर जाए, पैसे बिना तो कोई काम नहीं होगा। उस समय ऐसा हुआ था 1400 साल पहले, और फिर ये लड़ाई लड़ी गई थी पानी के लिए, और ये पानी बांटा गया था, है ना। सबसे बड़ा धर्म माना गया था कि पानी और शरबत पिलाया जाए प्यासों को। क्यों? क्योंकि वाटर सोर्सेस पे कब्जा कर लिया कुछ लोगों ने। तो ये अगर समाज बांटेगा नहीं, ये सब समाजों में है, और यानी अमेरिका के एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, जहाँ वर्ल्ड का फर्स्ट और सेकंड रिचेस्ट पर्सन क्या कर रहे हैं। तो ये काम हम छोटे से छोटा व्यक्ति भी कर सकता है। हम 10 रुपये भी कमाते हैं तो 1 रुपया समाज के लिए दे सकते हैं। ये धर्म है जिसमें स्वार्थ भी सिद्ध हो और परमार्थ भी सिद्ध हो। अपना काम ही ऐसा करें जिससे समाज का भला होता हो। ऐसा काम ही क्यों करें जिससे समाज, क्यों बनाए शराब जिससे समाज का नुकसान होता है। ये जो दुनिया है ये नंबर गेम पे आ गई है। जो गिनती में अच्छा है वो अच्छा है, बट वो थोड़ी अच्छा है। आप देखिए, हमें नाज है अपने देश पे, अपने टाटा ग्रुप पे। टाटा ग्रुप भी चाहता तो 90% अपना शेयर होल्डिंग खुद के पास रख सकता था, 10% शेयर होल्डिंग पब्लिक को देख के दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन सकता था। उन लोगों का त्याग देखिए, उन लोगों का त्याग देखिए। टाटा सन्स जो कि सब कंपनियों को होल्ड करती है मेजॉरिटी में, उसकी 64% होल्डिंग चैरिटेबल ट्रस्ट्स के पास है। जो वो कमाते हैं, रतन टाटा के पास तो 1% शेयर भी नहीं है। 64% होल्डिंग, 64% होल्डिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, महिलाओं के, बच्चों के, स्कूल पे, रिसर्च सेंटर पे, हॉस्पिटल्स पे, वहाँ सब पैसा जाता है जो बिजनेस से कमाते हैं। वो कहते हैं जो हम समाज से लेते हैं वो समाज को ही लौटा देते हैं। रतन टाटा ने शादी ही नहीं करी है, जेआरडी टाटा के बच्चे ही नहीं थे, पालखे वाले के बच्चे ही नहीं थे। वो अपने उसमें लिखते हैं इंटरव्यूज में कि मैंने और अपनी वाइफ ने मिलकर तय करा कि भाई अपने को तो समाज सेवा करनी है, तो वो अपन अच्छी तरह इसलिए नहीं कर पाएंगे अगर बच्चे बच्चों के झंझट में पड़ गए तो अब हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि भाई बच्चे नहीं करना और अपने को तो सेवा काम में लगना है। इस कोटि के लोग हमारे यहाँ हैं, हुए हैं और हैं आज भी। इन्हें टाटा ग्रुप तो एक एग्जाम्पल है। जो गांधी जी ने कहा ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन सोसाइटी के ट्रस्टीज हैं, नेशनल वेल्थ के ट्रस्टीज हैं, दे आर दी ट्रस्टीज ऑफ द नेशनल वेल्थ। तो वो हवस नहीं रखे हम कि जो है मैं गप कर जाऊं, और ये भी नहीं रखे। रतन टाटा ये नहीं सोचता है कि भाई मैंने तो शादी ही नहीं करी, मेरे तो बीवी बच्चे नहीं है, मेरे को क्या करना, मैं तो आराम से बैठूं और क्यों काम करूं। नहीं, वो गीता का अगर सही हम देखेंगे, जो कर्मयोगी की बात करी है, वो टाटा ग्रुप आपको मिलेगा कि उसका फल नहीं लेना है अपने को, उसका फल नहीं भोगना है, तो भी एक्सीलेंस से काम करना है क्योंकि इसमें समाज का हित है। उनकी बेसिक थ्योरी है वी डोंट अर्न मनी, व्हाट दे से इज वी डोंट अर्न मनी, वी अर्न मनी टू क्रिएट वेल्थ फॉर द सोसाइटी, वी क्रिएट वेल्थ फॉर द सोसाइटी। तो वो यानी एक कर्मयोगी जो होना चाहिए वो इसके हिसाब से। तो मित्रों, इसमें और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन आज इतना ही रखते हैं। और मुझे लगता है कि सही जगह सही चीज़ मैंने कही है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना प्रेम से, इतना ध्यान से, इतने मनोयोग से सुना इन बातों को। धन्यवाद।
आपने बहुत ही रोचक तरीके से गीता के ज्ञान को हमारे वर्तमान जीवन में कैसे उपयोगी तरीके से किया जाए।